कहते कि हमें धर्म प्रकट करना है, वो द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है, ये हमें नक्की करना है। क्या हो सकता है?
पर्याय,
क्योंकि जो नहीं थी और प्रकट करना है। स्वभाव तो अनादित्य है, स्वभाव तो है और है, उसको कोई उत्पन्न नहीं करा सकता, परंतु जो जैसा स्वभाव है वैसे पर्याय में प्रकट होना, पर्याय में प्रकट होना यानी जो अव्यक्त है वो व्यक्त हो जाना, क्योंकि हमें अनुभव जो होता है वो पर्याय में जो प्रकट हुआ है उसका वेदन, उसका अनुभव होता है। स्वभाव यहाँ ज्ञान और सुख से भरपूर है, फिर भी पर्याय में अभी दुख क्यों है? क्योंकि जैसा स्वभाव है, अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद का स्वभाव है, उसका लक्ष्य नहीं करने से वो पर्याय में प्रकट नहीं हुआ है। तो ये पर्याय में प्रकट करने का जो उपाय हमें जिनेन्द्र भगवान ने बताया है, उस उपाय को हम करेंगे तो हमें भी जैसे जिनेन्द्र भगवान ने अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, ज्ञान वगैरह प्रकट किया है, वैसे हम भी अपनी पर्याय में प्रकट कर सकते हैं। इसी के लिए यहाँ हमें जो जिनागम का अभ्यास करना है, क्योंकि हमने देखा है कि प्रत्येक जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है, उसकी देह बुद्धि पड़ी है, शरीर में आत्मबुद्धि। एक प्रश्न ऐसा ही आया है, जीव का मिथ्यात्व विभाव रूप परिणमन है, तो जीव अनादि से स्वभाव रूप सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है, विभाव रूप अनादि से कैसे है? तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि अनादि से स्वभाव रूप ही है, यही प्रश्न है ना? सभी को पहले विभाव था, फिर बाद में उसने स्वभाव प्रकट किया, ऐसा क्यों कहते हैं? तो उसका उत्तर ये है, प्रत्येक जीव अनादि से, यानी जीव और कर्म अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में ही पाए जाते हैं। ऐसा कभी नहीं था कि जीव शुद्ध था और बाद में उसमें कर्म आकर मिले हो। तो हर समय क्या हो रहा है, जो कर्म और जीव का बंध था उसमें कर्मों का उदय हो रहा है, और कर्मों का उदय हो रहा है उस निमित्त से यहाँ जीव के मोहराग द्वेष परिणाम भी हो रहे हैं, और यहाँ मोहराग द्वेष परिणाम हो रहे हैं तो नया बंध भी हो रहा है, और ये कब से चल रहा है, तो अनादि से। यानी अनादि से क्या हो रहा है, हर समय क्या होता है, पुराने कर्मों का उदय, उसी समय जीव के मोहराग द्वेष, और उसी समय नए कर्मों का बंध। हम देखते हैं आठ कर्म है, तो आठ कर्मों में आठ कर्मों का उदय भी हर समय चल रहा है, कि सात कर्मों का ही होता है हर समय, आठों कर्मों का उदय हर समय चल रहा है। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय के उदय में क्या होता है, उस गुण की हीनता भी चल रही वर्तमान में। क्यों? कर्मों के कारण नहीं, जीव के अपने स्वयं की योग्यता से वो हीन ज्ञान रूप, हीन दर्शन रूप, हीन पुरुषार्थ रूप परिणमित हो रहा है। ये तो मोहनी को जरा अलग रखते हैं। अघाती कर्मों में क्या हो रहा है, साता या असाता वेदनी का उदय चल रहा है, तो जीव वो हमें कोई संयोग नहीं देते हो, परंतु जीव अनुकूल संयोगों का लक्ष्य करके स्वयं सुख रूप कल्पना करता है, तो हम कहेंगे साता का उदय चल रहा है। वही जीव उसी समय थोड़ी देर के बाद क्या करता है, अन्य किसी प्रतिकूलताओं को लक्ष्य करता है, और स्वयं जिसको हम कहेंगे दुख रूप परिणमता है, तो उसको कहेंगे असाता का उदय हो रहा। तो मान लेते हैं अभी यहाँ पंखा लगाया है, तो पंखे का घूमना साता का उदय है कि असाता का उदय है? बोलो आप क्या कहेंगे? मान लेते बहुत ठंडी के दिन है और पंखा घूम रहा है, तो साता के उदय में घूम रहे हैं कि असाता के उदय में घूम रहे हैं? साता के उदय, असाता के उदय। आप क्या कह रहे हैं? ऐसा ऐसा ही नहीं क्या? हम उसका लक्ष्य करके अपने को सुखी या दुखी अनुभव कर रहे हैं। पंखे का घूमना तो उसके अपने खुदगल का जो कार्य है। देखो पंचासी काय में ऐसा आता है कि जीव के जीव में तो खुदगल का निमित्त बनता है, पर खुदगल के कार्य में जीव का निमित्त नहीं बनता है। वहां तो काल द्रव्य को निमित्त कहा है। फिर से सुनना, जीव द्रव्य के लिए खुदगल का निमित्त कहा है, पर पुद्गल का जो कुछ कार्य हो रहा है उसमें तो काल द्रव्य को निमित्त कहा है। वैसे तो काल द्रव्य सभी के परिणमन में निमित्त होता है, परंतु पुद्गल को जीव का निमित्त नहीं कहा, उसको उसको उड़ा दिया। और हम तो मानते हैं हम सब करेंगे तो पुद्गल का कार्य होता है, हमारे बिना कैसा होता है। अपनी बात दूसरी चल रही है, कौन से कर्मों के उदय में क्या हो रहा है। तो ये जो संयोगों के कारण उसको नया बंध हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, संयोगों के कारण राग द्वेष हो रहे कि नहीं हो रहे, संयोगों के कारण होते तो मुनिराजों को भी होना चाहिए था, अरिहंतों को भी होना चाहिए था। अरिहंतों को कौन से संयोग है, समोचरण वगैरह, इतने भक्तगण को सुनने को आए हैं, सब हाथ जोड़कर भक्ति वगैरह कर रहे हैं, तो उनको उनके प्रति राग होना चाहिए था। तो संयोग हमें राग द्वेष नहीं कराते, संयोगों के कारण नया बंधन नहीं हो रहा है। तो लंबी आयु से नया बंध होगा कि छोटी आयु से नया बंध होगा? नहीं। अच्छा, शरीर के कारण नाम कर्म के उदय में क्या हो रहा है? शरीर की रचना हो रही है, गोला है या काला है, या उसके हड्डी की कितनी मजबूती है, उसके स्पर्श रस गंध और शरीर के सब कुछ है, वो सारा काय से कंट्रोल होता है। नहीं, उसमें निमित्त कौन है? नाम कर्म। तो नाम कर्म का उदय है, शरीर गोरा है तो अधिक बंद होगा, उसके कारण बंद होता है कि काले शरीर से होता है? बोलो, नहीं होता। हाँ, वो अभी हमने मोहिनी को नहीं देखा है ना, अभी उच्च कुल से बंद होगा कि नीच कुल से बंद होगा? तो ये आठों कर्मों में तो हमने सात कर्मों को तो हटा दिया, उनके कारण, उनके उदय के कारण नया बंद नहीं हो रहा। हमने एक कर्म को छोड़ा था, मोहिनी। मोहनीय के दो भेद है, एक दर्शन मोहनीय, उसमें श्रद्धा की विपरीतता हो रही है उसके उदय में, और एक चारित्र मोहनीय, उसके निमित्त से राग द्वेष हो रहे हैं। तो मोहनीय के उदय में देखो, एक मोहनी का आठ कर्मों का उदय है, उसमें मात्र मोहनीय के उदय में जीव मोह राग द्वेष करता है, और उसके कारण नए कर्म आते और बनते हैं, जिसको हम कहेंगे। समय सार में आश्रय किसको कहा है मालूम है? अभी समय सार का तो अभ्यास वाले है ना यहाँ पर, क्यों अनुभव जी? यहाँ कहते आश्रव किसको कहना, हमने तो देख लिया यहाँ पर, कर्मों के आने को आश्रव कहते, यानी कारमान वर्गणा कर्म रूप होने को आश्रव कहते। तो मैं पूछती हूँ, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं कि पुराने कर्मों के उदय को आश्रव कहते हैं? क्या कहा है समय सर? गाथा 164-65 आश्रव अधिकार की पहली गाथा है, तो उसमें क्या कहते हैं? कर्म के आने के जो निमित्त है वो खरेखर आश्रव है। खरेखर निश्चय से आश्रव किसको कहा? जीव के मोहराग द्वेष परिणाम ये जीव चेतन आश्रव है। और पुराने कर्मों का उदय जो है, कौन से? मिथ्यात्व का उदय है, चारित्र मोहनीय का उदय है, वो जिसको कहेंगे मिथ्यात्व अविरति प्रमाद प्रसाद योग, वो कर्मों के उदय को वहां आश्रव कहा है। और जो नए कर्म कारमान वर्गना कर्म रूप होते उसको बंध कहा है, क्योंकि ये पुराने कर्मों के उदय में यहाँ जीव मिथ्यात्व राग द्वेष कर रहा है, और उसके कारण नए आठों कर्म बनते हैं। मोहनीय के उदय में नए आठों कर्म बनते हैं। तो यहाँ पुराने कर्मों के उदय को, क्योंकि कर्म अनादि से है, उसका उदय भी अनादि से चल रहा है, इसलिए मिथ्यात्व भी अनादि से है। कर्म की तरफ से देखेंगे तो कर्म के कारण कहेंगे, पर है तो वो जीव का अपराध। अपनी बात कहाँ से चल रही थी कि जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि क्यों है, कि शरीर मैं हूँ ये बात उसको सिखाने नहीं पड़ती। छोटा बच्चा हो या जो कीड़ी मकोड़े हो या कोई भी हो, मैं शरीर हूँ ये बात अनादि से चल रही है, परंतु मैं जुदा हूँ, जीव जुदा हूँ, और ये शरीर जुदा है, राग द्वेष जुदा है, मेरा स्वभाव जुदा है, ये बात हमें जिनेन्द्र भगवान के उपदेश से ही मालूम पड़ती है। और उस उपदेश को बराबर ग्रहण करेगा, नहीं जानेगा, सोचेगा, तत्व विचार करेगा, तो ही उसको सम्यक तो हो सकता है। उसके बिना ऐसे ही किसी को सम्यक तो हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। शास्त्र में आता है निसर्ग जर अधिगमज, अधिगमज यानी उसको उस भव में कोई ज्ञानी मिले, भले वो ज्ञानी चौथे पांचवे गुण स्थान वाले हो या मुनिराज हो या तीर्थंकर हो, परंतु किसी को बिना उपदेश के, हाँ इस भव में उपदेश नहीं मिला तो कहेंगे वो निसर्ग जाए, परंतु उसकी देशना यानी ज्ञानी का उपदेश उसको पूर्व यानी तीन भव तक वो देशना निमित्त हो सकती है, तो उसके है ही है डेफिनेटली। इसलिए कहते हैं कि ये विभाव रूप अनादि से कैसे है, ये जो प्रश्न था इनका, स्वभाव रूप परिणाम ने के लिए वो सारे जो कंडीशंस होते हैं निमित्त रूप से, ज्ञानी की देशना होती है, जीव तत्व विचार करता है, वो सब पांच लब्धि की बात उसमें लागू हो जाती। अपना विषय यहाँ तो आश्रम समझ में नहीं आया, हम तो ऐसा ही कहते हैं कि नए कर्मों का आना, आना उसको आश्रवण यानी आना, उसको आश्रव कहते हैं। आना यानी एक भी परमाणु बाहर से नहीं आता है, जो आत्मा के जो प्रदेश है उन्हीं प्रदेशों में अनंतानंत कारमाण वर्गणा खचाखच भरी हुई है, उसमें से कुछ कारमाण वर्गणा कर्मरूप परिणमित होती है, क्योंकि राग द्वेष के परिणाम जीव के प्रदेशों में हो रहे हैं, वहीं पर जो कारमाण वर्गणा है उसमें से कुछ कारमाण वर्गणा कर्मरूप होती है, तो उसको हम कहेंगे वो कर्मों का आश्रय हुआ यानी आया। आया यानी बाहर से नहीं आया कुछ भी, बचपन में हम ऐसे थे कर्म का आना कर्म का जाना, वहाँ जाते समय पूरे लोक में कहीं पर भी जा सकते हैं, पर कोई भी एक भी परमाणु बाहर से आता नहीं है, उन्हीं प्रदेशों में जो है वो कर्मरूप हो जाते हैं। तो कहते जो आने वाले जो है कारमाण वर्गणा कर्मरूप होते हैं उसको कर्म का आश्रवण कहेंगे, तो उसका निमित्त कौन है, तो जीव के मूराग द्वेष परिणाम, और वो निमित्त का और निमित्त कौन है, तो पुराने कर्मों का उदय। तो आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं और मूल में कुंकुंदाचार्य ने भी कहा है कि खरेखर आश्रव कौन है, पुराने कर्मों का उदय, जिसको आश्रय प्रत्यय जो कहते हैं, कर्म बंध के प्रत्यय कारण क्या है, तो वहाँ आप देखना वो तो कर्मकांड में भी यही बात है, द्रव्य प्रत्यय और भाव प्रत्यय। द्रव्य प्रत्यय में मिथ्या तो कर्म का उदय या जो चारित्र मुनि का उदय आदि जो सारे है वो सारे द्रव्य प्रत्यय ने कारण है, यानी वो अचेतन आश्रव उसको कहा, और चेतन आश्रव जीव के मोहराग द्वेष परिणाम उसको आश्रव, जिसके कारण से नवे कर्म आते हैं उन पुराने कर्मों के उदय को और जीव के मोहराग द्वेष परिणामों को आश्रव कहते हैं, खरे खर आश्रव उनको कहा है। आप देखना उसमें मिली क्या आपको गाथा मिल गई, हाँ क्या लिखा ऐसा है ना, उसकी टीका में लिखा है। इस जीव में राग द्वेष और मोह यह आश्रव अपने परिणाम के कारण से होते हैं, इसलिए वे जड़ न होने से चिदाभास यानी चैतन्य में हो रहे। जीव के मोहराग द्वेष है वो चैतन्य की परिणति है, जीव की परिणति है। मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, देखो प्रमाद को कषाय में गर्भित करके चार ही बातें बताते कहीं कहीं, ये उद्गल परिणाम ज्ञानावरणादि उद्गल कर्म के आश्रवण के निमित्त है। आश्रवण यानी वो कारमाण वर्गणा कर्मरूप होना, वास्तव में आश्रव है किसको कहा, पुराने कर्मों के उदय को वास्तविक आश्रव का, और उनके कर्म आश्रवण के निमित्तत्व के निमित्त होने से राग द्वेष मोह है जो अज्ञान में आत्म परिणाम है। मैं अपनी भाषा में आपको सरल करके बता रही हूँ कि जो नए कर्म बनते हैं उसका निमित्त कौन है, जीव के मोह राग द्वेष परिणाम, और उस निमित्त के निमित्त कौन है, पुराने कर्मों का उदय। एक समय में तीन कार्य हो रहे हैं, पुराने कर्मों का उदय है यहाँ जीव के मोहराग द्वेष परिणाम है, और नए कर्मों का बनने है। पुराने कर्मों के उदय में मुख्यतः तो मोहनी को ही लेना है, क्योंकि वो राग द्वेष में निमित्त मोहनी है, संयोग उसमें निमित्त नहीं है। हाँ जो कर्म के निमित्त से जो होता है उसमें और बाह्य निमित्त भी उस कर्म के लिए होता है, जैसे आपका भी वो चर्चा चल रही थी, यहाँ एनेस्थेसिया दिया और जीव के ज्ञान की हीनता हुई, तो ये जो ज्ञानावरण कर्म की वहां जो क्षोभ ही हुआ उसी समय उसको और बाह्य निमित्त मिला, कौन सा इंजेक्शन, अनेक निमित्त होते हैं, तो आरोप डायरेक्ट हमें तो बाह्य निमित्त दिखता है, अंतरंग में कर्मों की जो अवस्था है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं होता है डायरेक्ट, इसलिए जो बाह्य चीजें है उसी पर आरोप आता है, यानी निमित्त के भी और निमित्त होते हैं। और शास्त्र ने उसको कर्म का नो कर्म है, मेरी भाषा में कर्म के हृदय का वो एजेंट है, बाहरी कोई एजेंट, तो उसके कारण ऐसा हो जाता है। हमें तो ऐसे कंफ्यूजन होते ना कि ये साक्षात दिख रहे कारण, और आप कहते हैं इसका कारण से नहीं हो रहा। अपना बहुत विषयांतर हुआ है, अभी अपनी बात चलेगी। उत्तम त्याग धर्म आजकल स्वरूप है। देखो कर्म की थियोरी बहुत सूक्ष्म है कहीं, और तो है तो इंटरेस्टिंग, और हमें सभी हमारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है। अभी कभी कभी कोई बात पहली बार सुनते तो बहुत कंफ्यूजन सा हो जाता है। अभी पर्याप्ति के प्रकरण में ऐसे जो चर्चा चल रही थी ना, तो अभी अपना विषय त्याग धर्म है, उसकी हम चर्चा करेंगे। देखो त्याग धर्म की बात आती है तो बहुत सारी पूजाएं वहां पर, कहीं कहीं तो ज्ञान की मुख्यता से उसका कथन आता है, और उसमें भी व्यवहार और निश्चय से दो भेद करके उसका भी वर्णन आता है। व्यवहार से दान को भी त्याग कह देते हैं, और निश्चय से तो मोह राग द्वेष के त्याग को ही त्याग धर्म कहा है। समझ में आती है ना? तो यहाँ जो त्याग धर्म की बात है और उत्तम त्याग धर्म की बात होती है, तो उत्तम शब्द क्या सूचित करता है? सम्यक तो यही है, मुनिराज जितनी अंतरंग स्थिरता है, यानी इतनी वीतरागता उत्पन्न हुई है, तब उनके वो त्याग धर्म प्रकट हुआ है। तो यहाँ उसकी प्रवचन सार में उसकी आचार्य जयसेन ने उसकी ऐसी परिभाषा बनाई है, निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक। देखो ग्रहण और त्याग ये दो शब्द आते हैं, कि शुद्धात्मा का ग्रहण करना और राग को छोड़ना। तो ग्रहण कौन से हाथ से करना, राइट हैंड के लेफ्ट हैंड? तो ग्रहण करने का अर्थ क्या होता है आपको मालूम है? ग्रहण करना है ने क्या कहा ना, शुद्धात्मा को ग्रहण करो, सही कहा बताएंगे? हाँ, आप क्या कहते हैं? ग्रहण करना का अर्थ क्या है? उसमें रमण। और कोई बताएंगे? जानना। ग्रहण ग्रहण करना का अर्थ होता है जानना, और त्याग करने का अर्थ क्या होगा? उसमें अंतर ना, शुद्धात्मा को ग्रहण करो और राग का त्याग करो। उसको जानना छोड़ो ना, एक को जानो और दूसरे को जानना छोड़ दो। सरल का अर्थ इतना हुआ ना, क्योंकि राग द्वेष क्या छोड़े, राग द्वेष के हम करता नहीं है, छोड़ना तो पूरा ही छोड़ देंगे एक समय में, वितराग हो जाओ ना, क्यों कौन ना पड़ता है। तो हमने अभी तक क्या समझा था कि मैं राग द्वेष में हो रहा हूँ, ज्ञान और राग की भिन्नता भाषित नहीं हो रही थी। तो हमने वो स्फटिक का उदाहरण दिया था कि स्फटिक के बाजू में कोई लाल पीली कलर की वस्तु है तो पूरे स्फटिक में वो छाया आती है। उस समय भी उसका निर्मल स्वभाव स्फटिक का कहीं चला नहीं गया है, तो वो निर्मलता अपने ख्याल में अपने ज्ञान में हमको ले लेना, उसकी प्रतीति होना। उसके लिए वो लाल पीला कलर आपको कोई नुकसान नहीं दे रहा है, उसके होते हुए भी निर्मलता हम ख्याल में ले सकते हैं। तो हम कहेंगे उस निर्मलता को ग्रहण करो और वो लाल पीले को छोड़ दो। समझ में आती है ना? वो गौण करके हमारा स्वभाव तो वैसा का वैसा है, ऐसे ही यहाँ शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना है। यानी शुद्ध आत्मा किसको कहा? स्वभाव भाव को। स्वभाव हमेशा शुद्ध ही है, स्वभाव में कोई राग द्वेष का प्रवेश नहीं है। हाँ परिणति में राग द्वेष है, परंतु हम अभी स्वभाव की बात देख रहे हैं तो स्वभाव में राग द्वेष है ही नहीं। जब हम स्वभाव को जानते रहेंगे तो उसमें राग द्वेष दिखाई देगा कि नहीं देगा, ये मेरा प्रश्न। वस्तु पूरी कैसी है? स्वभाव भी है और परिणमन भी है, और हमने अभी परिणमन की ओर लक्ष्य नहीं दिया। हमको केवल स्वभाव को अपने ज्ञान में लेना है, ये सब ज्ञान में ही होता है, क्योंकि ये सब जिसको त्याग करना है ग्रहण करना है सब ज्ञान में ही होता है, क्योंकि ज्ञान प्रत्याख्यान ही सके प्रत्याख्यान ने त्याग। और ये हमने स्वभाव को जाना है, स्वभाव को ही देखते रहे हम तो हमने वो परिणमन को गौण कर दिया। वो है परिणमन, वो कहीं चला नहीं गया है, हर समय जो यथायोग्य पर्याय होती रहेगी। राग द्वेष के परिणाम अभी है, क्योंकि अभी मिथ्या दृष्टि है, तत्व निर्णय पूर्वक अपने स्वभाव को ख्याल में ले रहा है। इन्हें निज शुद्धात्मा का ग्रहण करना इसको कहते हैं। ग्रहण करना इन्हें क्या करना? जानना। देखो निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक हमेशा त्याग होता है, वो ग्रहण पूर्वक होता है। हमने किसका त्याग किया? पैसे का त्याग किया, घर का त्याग किया, ग्रहण क्या किया? किसके अवलंबन से यह त्याग हो रहा है? निज शुद्धात्मा को जाना ही नहीं है और हमने इसको छोड़ा उसको छोड़ा, रहे हो तो तुमसे तुम्हारे लिए कब थी वस्तु? क्योंकि आत्मा तो पर पदार्थ के त्याग स्वरूप ही है अनादि से, क्योंकि हमने अभी देखा था प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में विराजमान, अपना द्रव्य अपना क्षेत्र अपना काल और अपना भाव छोड़कर किसी भी पर द्रव्य को उसने कभी ग्रहण ही नहीं किया है, ग्रहण ही नहीं किया उसने कभी लिया ही नहीं अपने में, तो वो त्याग क्या क्या करेगा? तो ये परवस्तु का त्याग किया हमने, आज ये छोड़ दिया हमने वो छोड़ दिया, ये जो हम त्याग की बात करते हैं लौकिक में भी बताते हैं, हमने इतने रुपए पैसों का त्याग किया, हमने वो क्या आलू का त्याग किया, हाँ वो आपकी थी कब, हमने आपको कहा, हमने भी पुणे में कौन सा स्ट्रक्चर है बड़ा, हम फर्ग्यूसन कॉलेज में, हाँ शनवारवाड़ा, मैंने शनवारवाड़े का त्याग कर दिया या वो मैंने आपको दे दिया, आप कहेंगे आपका था कब? तो इस तरह से ये परवस्तु वो जो ग्रहण करने के भाव थे ना, आलू खाने के परिणाम थे, उसमें वृद्धता थी, अब जब हमें पता चल गया कि उसमें अनंत जीव राशि विद्यमान है, तो खाने की जो वृद्धता, खाने का राग, खाने की लालसा है, उसका त्याग किया, तो हम पूरा का पूरा लंबा बोलने की पद्धति नहीं है, शॉर्ट में बोलने की पद्धति है, तो हम क्या कहेंगे, आलू का त्याग किया। अपने परिणाम जो हो रहे थे मोह राग द्वेष परिणाम, उनका त्याग होता है, वो परवस्तु का त्याग आप क्या करेंगे? क्योंकि आत्मा में त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है, आत्मा में क्या प्रत्येक वस्तु में है, कोई भी एक वस्तु में दूसरी वस्तु है ही नहीं है, उसके त्याग स्वरूप ही है और ना ही वो उसका ग्रहण कर सकती है, आत्मा में कुछ नहीं घुस जाता। दर्पण में जो प्रतिबिंब है तो दर्पण में बाहरी चीज घुस जाती है, क्या होती है, तो हमारे ज्ञान में भी बाहरी कोई भी चीज घुस नहीं जा रही है, वो ज्ञान का अपना परिणाम है, परंतु यहाँ तो कहते त्याग करना है, तो यहाँ क्या लिखा देखो, निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक, यानी हम अपने निज शुद्धात्मा को जानते रहे, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, तो जब हमने निज शुद्धात्मा को जाना तो उसमें ना राग है ना द्वेष है ना शरीर है ना कुछ भी है, तो कहते बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति त्याग है, किसी को ग्रहण किया तो उनसे हम हटे, उनसे हम निवृत्त हुए, किससे, अंतरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह। तो अंतरंग परिग्रह कितने हैं, हमने एक बार यहाँ गिनाया था, किसी ने बताया था आपको याद है, कुल 24 है, अंतरंग में 24 का कुछ भी भेद करो, चलो इधर उधर थोड़ा, इधर का उधर जाओ, उधर का थोड़ा इधर ला, तो अंतरंग परिग्रह गिनाओ थोड़े, क्योंकि हमको त्याग करना है तो उसके नाम तो मालूम होने चाहिए। पहले में पहले किसका त्याग होगा, मिथ्या, कौन गिनना चाहते, गिनाना चाहते आप बताएंगे, मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ और नौ नौ कषाय, एक मिथ्यात्व, चार कषाय और नौ नौ कषाय, जो हास्य रति वगैरह हम गिनते हैं ना, तो एक मिथ्यात्व हुआ, चार कषाय पांच हो गए और नौ नौ पांच 14 हुए, इसको अंतरंग परिग्रह कहते हैं। और बाह्य परिग्रह में वो क्षेत्र मकान धन धान्य वो सब गिनते हैं, उसमें जितनी लिस्ट बना उतने हो, तो उपलक्षण रूप से 10 नाम बताए हैं, परंतु उसमें जो कुछ सभी बातें आती है, तो इसको कहते देखो निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक, यानी हमेशा त्याग होना होता है वो ग्रहण पूर्वक ही त्याग होता है, तो हमने त्याग किसको ग्रहण किया, तो अपने निज शुद्धात्मा को, यानी अपने स्वभाव भाव को ग्रहण किया, यानी हम उसको जानते रहे, जब स्वभाव को जानते रहे तो पर इसका हमने लक्ष्य भी छोड़ दिया, पर्याय में जो राग द्वेष हो रहे थे उसका लक्ष्य छोड़ दिया, तो उसको छोड़ा ऐसा कहने में आता है, तो नई जो पर्याय उत्पन्न होगी वो स्वभाव जैसी उत्पन्न होगी, उसमें वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाला वो नहीं रहेगा। हाँ भले अभी अन्य राग भी रहेंगे और प्रत्याख्यान संज्वलन, क्योंकि पहले जब आत्मा की अनुभूति होती है तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी टल गए, परंतु बाकी है अभी, और वो भी आत्मस्थिरता के द्वारा ही वो नष्ट हो जाएंगे, जीव ने तो ग्रहण ही करना है, बाकी जो कार्य होना है तो अपने आप होगा। तो बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति त्याग है, और उसी में और भी 12 अनुप्रेक्षा में भी उसका वर्णन आता है कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि जो जीव संपूर्ण परद्रव्यों से मोह छोड़कर, परद्रव्यों को छोड़कर ऐसा पहले नहीं कहा, मोह छोड़कर यानी ममत्व भाव जो है, परद्रव्यों में अहम बुद्धि यानी ये मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, ये उसमें अहम बुद्धि हुई, ये मेरा है या अन्य चीजें मेरी है, ये ममत्व बुद्धि हुई, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, ये चार प्रकार की जो मिथ्या मान्यता है, तो इसके कहते संपूर्ण परद्रव्यों से मोह छोड़कर। थोड़े तो अपने पास रखो कि नहीं रखो, क्योंकि हमने तो सुना है उसका कुछ परिमाण करो, परिग्रह का परिमाण करो, तो हमने भी परिमाण किया, थोड़ा मिथ्यात्व रखेंगे, थोड़ा क्रोधमान, परिग्रह का परिमाण पता है ना, तो चलेगा कि नहीं चलेगा। यहाँ कहते ना मोक्षमार्ग प्रकाशक ने क्या लिखा है, सूक्ष्म भी मिथ्यात्व टालने योग्य, क्योंकि वो सूक्ष्म मिथ्यात्व अपने अभिप्राय में कहाँ छिपा है, कोई भगवान आकर हमको बताने वाले नहीं है, देखो ये तुम्हारा सूक्ष्म मिथ्यात्व इसको टाल, हमें ही आगम के अभ्यास से हमारी कहाँ भूल हो रही है, हम कहाँ अटके हैं, क्योंकि सम्यक तो नहीं हो रहा है इतना अभ्यास करके भी, उसका अर्थ क्या है, अपनी रुचि अन्यत्र पड़ी है, अपने अभिप्राय में कहीं निमित्ताधीन दृष्टि पड़ी है, अपने अभिप्राय में कहीं कर्ता बुद्धि पड़ी है, अरे ये हमने नहीं किया पर हमने शुभ भाव तो किया कि नहीं किया, हाँ ऐसा लगता है ना, यानी वो राग का कर्ता होकर बैठा है तो उसका भी मिथ्यात्व चल रहा है, क्योंकि स्वभाव रूप मैं हूं तो वो स्वभाव में राग है ही नहीं है, ना राग का कर्तापना है। तो ये छोटी छोटी बातें या सूक्ष्म बातें रह जाती है और फिर भी हमें ऐसा लगता है नहीं, हमने तो अभ्यास किया है और फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, यही कह रहे हैं यहाँ पर, संपूर्ण परद्रव्यों से मोह छोड़कर। पहले परद्रव्यों को छोड़ा ऐसा नहीं कहा, वो छूटेंगे क्योंकि वो हमसे छूटे ही है, पर उनके साथ जो हमारी जो ये जो चार प्रकार की जो बुद्धि पड़ी है, अहम बुद्धि ममो बुद्धि कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, इसको छोड़कर, इसको कहते मोह छोड़कर, संसार देह और भोगों से उदासीन रूप परिणाम रखता है, उसके सहज हो जाते हैं, उसके जो सांसारिक कार्यों के प्रति कोई रुचि नहीं रहती, भोगों के प्रति देह के प्रति कोई रुचि नहीं रहती है, तो उसको कहेंगे इसने छोड़ दिया। जिसके शुद्धात्मा में रुचि हो गई है उसको अन्य जो लौकिक जो प्रसंग है, लौकिक जो उपलब्धियां है, उसकी कोई महत्ता ही नहीं रहती है, तो उसको कहेंगे उसने उसके प्रति वो उदासीन हो गया। लोगों को ऐसा लगता है क्यों अपने पर जबरदस्ती कर रहे हैं, हम तो कितने मौज मजा कर रहे हैं और ये ऐसा क्यों ऐसा मुंह लटका कर बैठा है, ये मुंह लटका कर नहीं बैठता है, उसको आपके अन्य प्रसंगों में रुचि नहीं है और उसकी रुचि अभी अपने शुद्धात्मा में हो जाती है, उसके लिए जो कुछ स्वाध्याय ध्यान अंतरंग में जो कोई बातें होती है उसी में उसकी रुचि है, इसलिए ये सहज उसका ऐसा हो जाता है, जबरदस्ती कहीं है ही नहीं यहाँ पर। तो कहते हैं संसार देह और भोगों से उदासीन रूप परिणाम रखता है, उसके त्याग धर्म होता है, यानी ये त्याग परद्रव्यों का नहीं है, अपने परद्रव्यों के प्रति जो मोह राग द्वेष परिणाम है उनका त्याग है, और अगर वो त्याग नहीं होगा, बस हमने वो ये चीज छोड़ी वो चीज छोड़ी और वो चीज छोड़ी परंतु उसके प्रति अभी ममत्व भाव कायम है, तो उसका वो त्याग भी नहीं कहलाएगा। आपका ये प्रश्न है छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज उनके तो आहार के लिए जाते हैं, तो क्या वो उसका महत्व उसमें परिणाम है, तो कहते नहीं है, क्योंकि उनके जो कुछ भी प्रवृत्ति होती है या अनुवृत्ति होती है उनके तो शुद्धात्मा की ही रुचि है, तो शुद्धात्मा के लक्ष्य से ही वो करते हैं, क्योंकि केवल आहार नहीं ग्रहण करके कृश होकर मर जाना इसके लिए वो नहीं कर रहे हैं, जितना आवश्यक है, जैसे उनका जो आहार है वो देह चल रहे और अपना संयम भी पले, इसके लिए उनके सारी प्रवृत्तियां होती, शरीर को माना ही नहीं, देखो शरीर को माना नहीं फिर भी कुछ राग तो रहेगा, अभी संज्वलन कषाय भी बाकी है, कुछ राग रहेगा, जैसे हमने वो स्विच ऑफ कर दिया, हमारा मान लेते यहाँ पंखा चल रहा था और हमने स्विच ऑफ कर लिया, तो पंखा बंद हुआ कि नहीं हुआ, कुछ काल तक घूमता रहा, घूमता रहा पर अभी उसके पीछे का फोर्स निकल गया, कुम्हार ने चाक पहले घुमाया हाथ से और फिर उसने वो डंडा जो था वो नीचे रख दिया। फिर भी चांप कुछ काल के लिए घूम रहा है, परंतु उसको घुमाने वाला जो हाथ से घुमा रहा था अभी उसके पीछे का अपना हाथ हटा लिया उसने, फिर भी वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। अभी इसके राग मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसे एकत्व बुद्धि मिथ्यात्व का तो पूर्ण नाश हुआ है, फिर भी कुछ राग भाव रहेगा, परंतु राग का कर्तापना छूट गया है। समझ में आते हैं? और उनकी जो आहार वगैरह की प्रवृत्ति है वो तो शुभ भाव में गिनाई जाती है। वो हम जो आहार लेते हैं किसके लिए हम जीते हैं? भोजन के लिए। और वो भोजन के लिए जीते और वो जीने के लिए भोजन करते हैं, जितना हो सके वो तो उपवास आदि करते हैं, परंतु वो भी किसके लिए करते हैं? कि प्रमाद ना हो, शिथिलता ना हो, इसलिए। और आहार भी क्यों ग्रहण करते हैं? कि वो उसी के सम्मुख तक उसमें कोई शिथिलता ना आवे, कि उसके कारण शरीर इतना कमजोर हो जाए कि मैं अपना लक्ष्य भी छोड़ दूं। यानी वो जबरदस्ती मरण करना, उपवास करके, ये उनका ध्येय नहीं है, वो धर्म भी नहीं है। भोजन छोड़ देना ये धर्म नहीं है, परंतु उसके उसके प्रति का ममत्व भाव तो छूट ही गया है, ये उसका ध्येय। देखो यहाँ समय सार में भी ऐसा बताया है कि अपने से भिन्न समस्त पदार्थों को ये पर है ऐसा जानकर जब त्याग किया जाता है तब वह प्रत्याख्यान त्याग कहा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुतः इन रियलिटी ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, यानी त्याग है। यदि हम वो पर है ऐसा ज्ञान ही नहीं करेंगे और बस हमने नियम ले लिया, हमने इतना इतना त्याग कर दिया, तो कहते वो त्याग भी नहीं कहलाएगा। जान कर ही उसका त्याग हो सकता है, वही सच्चा त्याग है। और इसके लिए वो धोबी के वस्त्र का उदाहरण दिया ना समय सार में, ऐसे उसमें आता है कि कोई यानी धोबी के यहाँ वो चादर उसने धोने के लिए डाली, तो गांव में दूसरे भी लोग होते, सबने वो अपनी अपनी चादर धोबी के यहाँ दी थी, तो उसने वहां से लाकर वो मेरी ऐसा करके वो ओढ़कर सो गया। परंतु वो धोबी ने किसी ने दूसरे जिसकी चादर थी वो उसने आके जगाया और कहता ये मेरी चादर है, कहते नहीं ना मेरी है, मैंने धोबी को दी थी, वो देखो मैंने उड़कर मैं सोया हूँ, ये मेरी है। तो उसने बताया उसके ऊपर ये उसका नाम लिखा था, ये उसने सब चिन्ह बता दिए, तो चिन्ह बता दिए तो उसने हाँ ये मेरी नहीं है, मेरी नहीं है पहले ज्ञान हुआ, परंतु अभी वो चादर निकाल के उसको देने में कुछ समय बीत जाएगा, परंतु अभी उसका जिस समय उसको ज्ञान हुआ तभी उसने नक्की किया ये मेरी नहीं है। समझ में आती है बात? ऐसे ही इसको पहले ज्ञान होगा कि ये पर वस्तु है, ये मेरी नहीं है, उससे प्रति का ममत्व भाव दूर हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं कि अरे 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 ये मेरी थी मगर अभी मैं इसका, ऐसा नहीं है, वो मेरी है ही नहीं है, तो फिर वो उसका त्याग कर देता है। यानी वो पूरा विस्तार से उन्होंने बताया दिया है। यानी त्याग किसका होता है? देखो त्याग धर्म कहा है और उसको कहीं कहीं दान के स्वरूप में भी बताया जाता है। तो दान पर के हितकारी ऐसी वस्तुओं का दान दिया जाता है, और त्याग क्योंकि त्याग धर्म है और दान करना है तो कोई सामने कोई व्यक्ति चाहिए कि जिसको हम दान दे सके। फिर दान देने में भी कितनी बातें होती है, दान जो पात्र होता है उसी को दिया जाता है, क्योंकि जब दान देना है तो पात्र है या अपात्र है तो इसका विचार होना चाहिए। फिर उसमें भी उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र आदि होते हैं। उत्तम पात्र मूल्यों को कहा है। तो कहते हैं वो दान किसको देना है? जो व्यक्ति जिसको दान देते हैं उसकी पात्रता आवश्यक है। दूसरी दाता जो है देने वाला, उसके भी कौन से गुण होने चाहिए उसकी भी कंडीशन आती है। जिस द्रव्य का दान देते हैं वो भी योग्य होने चाहिए, जिस किसी चीज का दान नहीं देते हैं। तो इस तरह से उसमें कितनी जो बातें आती है, परंतु ये सब व्यवहार में आता है, उसको दान को धर्म कहते हैं या त्याग धर्म में दान की मुख्यता से वर्णन करते हैं, परंतु वो सब व्यवहार से कहते हैं। निश्चय से क्या है? राग द्वेष का त्याग वही निश्चय त्याग है, मूल में ये बताते हैं। और दान में तो पर की जो उपयोगी वस्तु है वो हितकारी वस्तु उसका हम दान देते हैं। उसमें भी चार प्रकार के दान का वर्णन आता है शास्त्र में। कौन से चार है? पहले में आहार दान है, औषधि दान है, ज्ञान दान है और अभय दान है। वो तो सब हमने उसके बारे में बहुत सारे बातें पढ़ी। आहार दान में भी देखते ना कि किसको देना है तो उत्तम पात्र को आहार दान देना चाहिए, वहां मुनियों की बात आती है। तो ये जो दान के अर्थ में जो त्याग का ये बताते हैं, हमारी पूजा में भी लिखा है कि उत्तम त्याग कयो जग सारा औषधि शास्त्र अभय आहार, चार प्रकार के दान बताए हैं। ये तो कैसे बताए, ये तो व्यवहार से बताए। अब निश्चय क्या बताते हैं, निश्चय राग द्वेष निर्वार, निर्वार करना है उसका हटाना, उसका छोड़ देना। तो निश्चय त्याग क्या है कि राग द्वेष है, मोह भी उसके साथ आ गया, मोह राग द्वेष का त्याग ही वो निश्चय त्याग धर्म है। और व्यवहार से क्या, वो दान के रूप में उसको समझाया जाता है, बताया जाता है। और ज्ञाता दोनों दान समय, दोनों दान समय, ज्ञाता है यानी जो समय दृष्टि है, उसने अपना निश्चय स्वरूप जान लिया है, उसने तो मिथ्या तो अनंतान बुद्धि का त्याग हुआ है। और मुनिराजों को तो मिथ्या से तीन कषाय चौकड़ी का उनको तो त्याग हो गया है, तो उनके तो केवल संज्वलन रूप एक मंद कषाय बाकी है, तो उन्हीं का वो उत्तम त्याग कहने में आता है। तो मुनिराज आहार दान देंगे कि नहीं किसी को, वो औषधि दान देंगे क्या, नहीं देंगे। हाँ, शास्त्र दान है, शास्त्र है, शास्त्र को उठा को देना, इसको शास्त्र ज्ञान या ज्ञान दान नहीं कहते। ज्ञान दान यानी जो उपदेश है, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, तो वो उनका ज्ञान दान है। और अभय दान, वो शक्का योग की तो रक्षा करने का परिणाम है, तो अभय दान तो है ही है, समझ में आते हैं। तो ये श्रावक की अपेक्षा बताते हैं ना, आहार दान देना है, औषधि दान देना है, वो श्रावक की मुख्यता से। पर यहाँ जब धर्म कहते हैं तो धर्म तो स्वाधीन होना चाहिए, और जब दान की चर्चा आती है तो उसमें तो कुछ वो कौन सा द्रव्य देना है, किसको देना है, देने वाले कैसा होना चाहिए, इतने तो उसमें लिमिटेशंस तो आ ही जाती है। तो यहाँ त्याग धर्म से समझना है कि ये जो मैं तो त्याग स्वरूप ही हूँ, तो शुद्धात्मा में परद्रव्य का कभी कुछ प्रवेश ही नहीं हुआ है, और फिर भी शुद्धात्मा का लक्ष्य करने से परद्रव्यों के प्रति जो हमारे मोह राग द्वेष परिणाम है उसका त्याग करना, वो सच्चा त्याग। और जितनी आत्मस्थिरता होगी उतना वो त्याग अधिक दृढ़ता पूर्वक हो जाएगा। और मुनियों के जो त्याग होता है उसी को यहाँ पर उत्तम त्याग कहने में आता है। ऐसा नहीं समझना कि मुनियों ने घरदार छोड़ा है इसलिए उनको त्याग धर्म है, उन्होंने तो शुद्धात्मा का ग्रहण किया है और उस पूर्वक उन्होंने ये सब छोड़ा है तो उनको त्याग धर्म कहेंगे। ऐसा भी नहीं कहना कि हमने तो सब शुद्धात्मा को ग्रहण किया है तो हमें बाहर में कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी उल्टा तर्क उसमें नहीं चलता है कि हमने तो सब छोड़ दिया है, मोरंग हमारे छुड़ गए और हम घर में रहते हैं, बाह्य त्याग से क्या लेना देना, ऐसा भी उल्टा तर्क उसमें नहीं चलता। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि जिनके अंतर में इतनी वितरागता हुई है उनके वस्त्र पहने, उस शरीर मेरा है सब उनकी तो मान्यता ही नहीं है, और ना ही शरीर के प्रति अभी राग भी है। अभी पूछा ना, समय दृष्टि है, शरीर मेरा नहीं वो जान रहा है, अनुभव पूर्वक उसने जाना, फिर भी अभी उसके कपड़े पहनने का राग है, पैसा कमाने का राग है, बाल बच्चों का पालन पोषण करने का राग है, वो राग अभी है, वो राग का राग नहीं है, राग की रुचि नहीं है, राग का स्वामित्व नहीं है, वो आते हैं, वो आते हैं, वो भिन्न जानता है। राग से इतनी अटैचमेंट बिल्कुल नहीं रही है। पहले कैसा है, वो मेरा कार्य है, मैं करता हूँ, ये शुभराग तो करता हूँ ना, अभी तो वो तो बिल्कुल उसका स्वामित्वपना छूट जाता है, क्योंकि उस भूमिका में जो राग आने योग्य राग है वो आता है परंतु वो उसका करता नहीं। इसलिए जो प्रश्न होता है ना, हम शुभ भाव के तो करता ही नहीं, हम शुभ भाव करेगा नहीं करे, करेगा नहीं करे नहीं, वहां कर्ता बुद्धि अभी अंदर पड़ी है, होते हैं, होते हुए वो जानता है, और कैसे जानता है, भिन्न जानता है, क्योंकि समय दृष्टि तो अभी घर में चौथे पांचवे गुण स्थान वाला तो अभी गृहस्थ है, तो उसमें जो कुछ यथायोग्य राग द्वेष के परिणाम है तो उसको वो जान रहा है, अपने में हो रहा है, पर मैं उससे भिन्न हूँ, ऐसे उसके हर समय उसकी प्रतीति बनी रहती है। लोगों को प्रश्न क्या है, लोग क्या देखते हैं, प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो प्रवृत्ति तो वहां से ये करते हुए उनको दिख रहे हैं और उनके प्रश्न ऐसा है, पर उसके अभिप्राय में अपने अंतरंग में जो कोई परिवर्तन हुआ है वो बाहर से तो दिखाई नहीं देता। इसलिए प्रश्न ऐसे होते हैं ना, या कितना स्वाध्याय करते हो, या अपने ऐसे ऐसे करते हो, फिर भी ऐसी बातें क्यों करते हो। चक्रवर्ती समय दृष्टि तो सब युद्ध करने के लिए कितने सालों तक वो तो अन्य अन्य जो मिलेश खंडों तक में उसमें चला जाता है, तो उसको मालूम नहीं है कि आत्मा में स्थिरता करनी चाहिए, बाहर क्यों घूमना चाहिए। वहाँ पर भी उसकी जो प्रतीति है वो हर समय चलती रहती है, यथा युग जब शुद्ध आत्मा का अनुभव भी होता रहता है। उसके लिए हम प्रवृत्ति की तरफ से उसको नहीं देख सकते, वो त्याग जो है वो अंतरंग से ही प्रकट हो जाता है। सभी धर्मों की भी जो बात है, हमने एक एक लक्षण को देख रहे हैं, पर धर्म तो एक ही है, और वो क्या है, अपने शुद्धात्म स्वरूप का लक्ष्य करके, जो वस्तु का जो स्वभाव है वो स्वभाव का लक्ष्य करने से पर्याय में स्वभाव जैसी दशा प्राप्त होती है, तो उसको कहते हैं इसको धर्म प्रकट हुआ। तो ये त्याग धर्म में उसी का बहुत सारा विवेचन किया जाता है, और उसमें कौन से दान में क्या क्या बातें होती है, ये बहुत सारी चर्चा ये दशलक्षण धर्म जो पुस्तक है उसमें भी है, अपने रत्नमय शावकाचार उसमें भी बहुत सारी बातें दी है, और उसमें से कुछ पॉइंट्स पर मैंने आपको बता दिया है। यहाँ कहते हैं, दान की प्रेरणा देते हुए बताते हैं यहाँ पर रत्नकरण शावकाचार में, हे ज्ञानी जनों, यदि अपना हित चाहते हो तो दुखी जीवों को तो दान करो, तथा समय दर्शन समय ज्ञान आदि गुणों के धारकों का यानी अन्य ज्ञानियों का धर्मात्माओं का महाविनय पूर्वक सम्मान करो, समस्त जीवों के प्रति करुणा करो, मिथ्या दर्शन का त्याग करो। अभी ज्ञानी है तो मिथ्या दर्शन का त्याग हो ही गया है। राग द्वेष मोह के धारक कुदेव, आरंभ परिग्रह के धारक भेषधारी कुगुरु और हिंसा के पोषक, राग द्वेष को पुष्ट करने वाले मिथ्या दृष्टियों के शास्त्र, इनकी वंदना स्तवन प्रशंसा करने का त्याग करो, जिसको अनायतन कहा है ना, क्रोध मान माया लोग इनके निग्रह करने में बड़ा प्रयत्न करो, क्लेश देने के कारण ऐसे जो अप्रिय वचन, गाली के वचन, अपमान के वचन, मदद सहित वचन कभी नहीं कहो। ये चरणानुयोग में ऐसी ही उपदेश की भाषा ऐसी आती है, ऐसा करो ऐसा मत करो, पर उसके पीछे भी द्रव्यानुयोग को सिद्धांत हमें लगाना चाहिए, और ये अपने लक्ष्य पूर्वक ही, शुद्धात्मा के लक्ष्य पूर्वक ही ये बातें हो जाती है। केवल अज्ञानी भी मिथ्या दृष्टि भी बाह्य से ऐसा अंगीकार करता है, क्योंकि उसके सदाचार पाए जाते हैं, मंद कषाय रूप प्रवृत्ति पाई जाती है, वो मात्र उतना करने से धर्म हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मुख्य बात यहाँ
ये त्याग और संयम दोनों चरित्र।
हाँ, त्याग में देखो है तो सारा ये, क्योंकि धर्म के लक्षण है, और धर्म क्या है, वितरागता है, और वितरागता क्या है, चारित्र गुण के स्वभाव पर्याय है, वो सारे उसके अलग अलग अपेक्षाओं से उसका वर्णन है, वो सारे जो धर्म है 10 के 10 लक्षण है वो चारित्र गुण की पर्याय है, स्वभाव पर्याय है ना, उत्तम क्षमा को मार्दवार जो सभी सभी उसमें लगे, सारे ही चारित्र गुण की स्वभाव पर्याय है, और मुनियों की मुख्यता से बात है इसलिए उत्तम शब्द लगाया। सम्यक दर्शन पूर्वक जो मुनियों की जो उत्तम अंतरंग में स्थिरता है, चारित्र गुण की पर्याय है, उसी को यहाँ उत्तम धर्म नाम से बताया जाता है। अभी समय हो गया, हम यही रुकेंगे। बोलो 24 और